ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जलवायु न्याय के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉ. श्रीकांत के पाणिग्रही। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
हमारा देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा सपना 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, लेकिन साथ ही में देश और पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। और हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति का वक्तव्य भी आया कि जलवायु परिवर्तन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसे लेकर भारत की ओर से कई कदम उठाए गए हैं और कई कदम और भी उठाने की जरूरत है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉ. श्रीकांत पाणिग्रही। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
स्वागत।
श्रीकांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए अस्तित्व का संकट बना हुआ है, इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं आप, और आपके अनुसार जलवायु परिवर्तन के मुख्य खतरे क्या हैं?
जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है। ये टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। इसका वजह यही है कि हमारा अभी जान खतरा में है। आप अगर देखेंगे तो इतना ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज बढ़ गया है एंड डिजास्टर बढ़ गया है। कहाँ बाढ़ आ जा रहा है तो कहाँ साइक्लोन आ जा रहा है, आंधी आ जा रहा है, और कहाँ किस टाइप का जो प्राकृतिक विपर्जय हमारा जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और इसमें हमारा जीवन संकट में है और हमारा प्रॉपर्टीज बचना मुश्किल हो चुका है। इसका वजह यही है कि आप अगर देखेंगे लास्ट 2000 साल पहले जब आइस एज था, तब से हमारा जो एक्टिविटी है वो कॉन्स्टेंटली ग्रीन हाउस गैस यानी कि जलवायु परिवर्तन कराने का, जो तापमान वृद्धि कराने का गैस हम लोग पैदा कर रहे हैं, और ये ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज है। और ये जो 7 ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते जा रहा है, ये ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम को आघात कर रहा है। आप अगर देखेंगे जहां जहां हमारा हॉट करेंट सब था समुद्र में, उष्ण करेंट, तो सारे कोल्ड करेंट हो चुके हैं, और कोल्ड करेंट उष्ण करेंट में कन्वर्ट हो गए हैं कहां कहां, और वो उनका गतिपथ चेंज हो चुका है। ऐसे एयर प्रेशर बेल्ट भी चेंज हो गया है, और बहुत सारे जीव जंतु प्राणियों अपना जीवन खो दिए हैं क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पाते। और इसमें जो सेंसिटिव प्राणी जगत और उद्भिद जगत वो अपना स्थिति खो बैठे हैं।
जी, जैसे आपने अभी बात करी तो साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। अभी हमने हाल ही के दिनों में देखा कि गर्मी का प्रकोप चरम पे था, और इससे बचने के लिए फिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा और हर एक व्यक्ति के द्वारा?
बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और गर्म केवल नहीं है। आप अगर देखोगे दिल्ली एनसीआर में 123 लोग 2 महीना का अंदर जीवन खो दिए हैं। इसमें हीट स्ट्रोक हुआ है, हीट वेव हुआ है, केवल दिल्ली में नहीं है, एनसीआर में नहीं है, ये 23 यानी कि 23 भारतीय शहर में हुआ है। तो इसका वजह यही है कि हमारा जो प्राकृतिक संतुलन रखने के लिए जितना हमारा एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी होना चाहिए, हमारा इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। उसको सही करने के लिए हमको पेड़ों का आवश्यक है। एक पेड़ का काम क्या है, ये सारे अंगारकाम्ल गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये खुद इनहेल करके ये ऑक्सीजन प्लैनेट को देती है जो हम जीवन के लिए उपयोग करते हैं। अभी पेड़ का संख्या इतना कम होते गए क्योंकि हमारा जीवन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, जीवन शैली बदल रहा है, उसके लिए प्राकृतिक संसाधन का विनाश और विनाशीकरण हो रहा है। ऐसे कॉन्टेस्ट में हम पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, और जिसलिए भी महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने बताया जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है, हर एक व्यक्ति अपना माँ के नाम पे एक पेड़ कम से कम लगाना चाहिए, केवल भारतीय नहीं सारा विश्व में, ताकि हमारा हरियाली बढ़े और पृथ्वी में शांति आए।
आपने एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान का जिक्र किया गया उपराष्ट्रपति जी के भाषण में, तो इसके उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों को आप कैसे देखते हैं? साथ ही श्रोताओं को ये भी बताएं कि इसके उद्देश्यों के बारे में बताएं और अपेक्षित परिणाम हमें क्या निकल कर सामने आएंगे।
जैसे मैं अभी बोला, हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत नीचे चला गया है क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो टॉप सॉयल है जो कि बहुत उर्वरक है और वो विनाश होते जा रहा है। सॉयल लॉसेस, टॉप सॉयल लॉसेस चरम सीमा पे पहुंच चुका है जिसमें खेती को बहुत चैलेंज हो गया है। और इतना सारे एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि धूल आसमान में आ गया है और वो हमारा बहुत सारे आसमान से लेके एयरबोर्न डिजीज बहुत सारे फैला रहा है। तो ये जितना सारे परेशानियां हैं इसका समाधान है पेड़ लगाने में। और पेड़ जब लगाते हैं वो ग्राउंड वाटर लेवल सही से मेंटेन होता है और जब एक्सेस वाटर वो आसमान को छोड़ देता है उसमें हमारा ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता है और सही टाइम पे बारिश करवाता है और फिर पेड़ और टॉप सॉयल को प्रिजर्व करता है। और टॉप सॉयल अगर प्रिजर्व होगा जो मिट्टी का साइकिल मेंटेन होता है उसमें पेड़ पौधे और लाइफ सिस्टम सस्टेन करता है। और ऐसे एक पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का फैक्ट्री है हमारा जंगल जितना सारे हैं, जितना पेड़ पौधे हैं। तो ये सब हमारा लाइफ का लाइफलाइन है और ये जीवन रेखाओं को हमको बढ़ावा देना है। और ये पेड़ केवल हमारा माँ से कनेक्ट करता है क्योंकि माँ सबसे अपना होता है हर एक व्यक्ति के लिए। और ऐसे ही एक पेड़ जो जीवन को रक्षा में मददगार होता है वो बहुत अपना है। और ये पेड़ फिर पृथ्वी को कनेक्ट करता है, पृथ्वी भी हमारा एक माँ है जो हमको बचने के लिए मदद करेगी।
उपराष्ट्रपति जी ने बायो एनर्जी के महत्व पर भी काफी जोर दिया है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के संदर्भ में बायो एनर्जी पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास में कैसे योगदान साबित होगा।
आप अगर देखेंगे भारत पृथ्वी की एक ग्लोबल लीडर सस्टेनेबल एनर्जी का होके उभार हुआ है और इसके लिए वो सारा विश्व भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। विज्ञान भवन में प्लानेरी हॉल में विगत वर्ष जुलाई में भारतीय सतत विकास संस्थान जिसका मैं महानिदेशक हूँ, हम एक इंडिया का सस्टेनेबिलिटी और डिकार्बोनाइजेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किए थे। इसमें पृथ्वी का बहुत देश का लोग भाग लिए थे और सबने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी तारीफ किए और भारत ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक इंडियन लीडरशिप में क्रिएट किया हुआ एक अलायंस है जो समग्र विश्व के लिए उद्दिष्ट है और समग्र विश्व इसका फायदा ले सकता है। और इसको डेवलप करने में हमारा संस्थान का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। और अगर आप देखेंगे G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में डिटेल्स दिया गया है। अभी ब्राजील का G20 भारत से इसको सारा विश्व में फिर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अपना जो प्रकृति है, प्रकृति में ऊर्जा छिप के रहा हुआ है तो उसको निकाल के हमारा सही समय पे सही उपयोग अगर किया जाएगा वो फसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करेगा और वो समाज के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान करेगा। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो सोलर ऊर्जा पर भारत का ग्लोबल लीडरशिप है, इस टाइप का बायो इथानॉल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे हमारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जिसके लिए इंडिया ग्लोबल साउथ में इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना खर्च कर रहा है और ये लोगों को इंस्पायर कर रहा है। और हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारा बिजनेस मॉडल है, इसको सारा पृथ्वी में आदर किया जा रहा है और ये भारत का महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने में आने वाली मुख्य चुनौतियां क्या क्या होंगी और इनसे कैसे पार किया जा सकता है?
भारत अपना जितना एनर्जी की ऊर्जा का आवश्यक है उसका जो खपत से 50% नया जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से करना के लिए इच्छा प्रकाश किया है और अपना कमिटमेंट विश्व में जाहिर किया है। तो इसके लिए हम बहुत सारे कई मुद्दा और कई प्रोग्राम गवर्नमेंट का आगे आया है जैसे नेशनल सोलर मिशन और जो प्रकृति हमको मुफ्त में सौर ऊर्जा दे रहा है उसका कैसे हम टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करके हमारा जीवन शैली को सरलीकरण कर सकते हैं और हमारा समुदाय ऊर्जा में इसका गुरुत्वपूर्ण व्यवहार कर सके, उसके लिए भारत सजग है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सबसे बड़ा उम्मीद भरा हुआ प्रोग्राम है और ये 5 ट्रिलियन जीगावाट और भयंकर एक भारत का ऊर्जा विकास में एक बहुत बड़ा पहलू का रूप में देखा जा रहा है। और ये एनर्जी जब हमारा इसके लिए काफी बजट में लोकेशन किया गया है और खर्चा किया जा रहा है और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी भारत का एनर्जी लैंडस्केप को संपूर्ण परिवर्तन करने का उम्मीद रखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे इथानॉल प्रोग्राम जो किसान को डबल इनकम करने में मददगार होगा और ऊर्जा में प्राकृतिक संसाधन का विनियोग होगा और पेट्रोल डीजल में 20% तक उसका यूज हो सकता है, उसके लिए डी टेक्निकल एंड बिजनेस मॉडल को भारत अपना प्रयोग करने के लिए रजतशील है
जी।
तो ये जो ऊर्जा का बायो एनर्जी और बायोफ्यूल्स इसी को सही ढंग से हमारा नेशनल एनर्जी लैंडस्केप में हम प्रयोग करने के लिए सजग हैं, ये हमको बहुत मददगार होगा और पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए मददगार होगा
जी। हर साल खासतौर पर उत्तरी भारत में बात करें ना तो पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है और अभी फिर आने वाले कुछ महीनों में हम ये समस्या फिर से उत्पन्न होता देखेंगे। इन समस्याओं को आप कैसे देखते हैं और क्या आप सुझाव देंगे कि एटलीस्ट इस समस्या से निजात पाया जा सके?
इस समस्या के लिए भारतीय सतत विकास संस्थान भारत सरकार का साथ और IIT कानपुर का साथ मिलके एक प्रस्ताव रखा हुआ है
जी।
और इसमें हमको टेक्नोलॉजी का व्यवहार करना होगा। प्रॉब्लम जो होता है हमारा जो आसमान में एक लेयर वाइज जो धुंध जम जाता है इसमें हवा को ऊपर जाना देती नहीं है
जी।
तो इसी के लिए उसको एक जैसे वो बनेगा नहीं उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का जरूरत है और जो इसका मूल सोर्स है जिससे ये निकलता है जैसे पराली है तो पराली नॉर्थ इंडिया में 9 स्टेट में इसमें आग लगा दिया जाता है और इसको वो नहीं करके उसको पिलेट्स टेक्नोलॉजी और बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिसके लिए जर्मन सरकार, ऑस्ट्रियन सरकार, पोलैंड का सरकार और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया का साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं और वो टेक्नोलॉजी से पराली को सही ढंग से व्यवहार किया जाएगा और उसका वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाएगा जिसमें किसान लोगों को फायदा हो सकता है और उसको जलाने का जरूरत नहीं होगा और उसमें ये प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है। और ये जो स्टेट स्टेट में अपना अपना रूल नियम आईन कानून का तालमेल रहता नहीं है इसको समझने के लिए एक नॉर्थ इंडियन 9 स्टेट में एक अथॉरिटी को बनाने का जरूरत है जिसका पावर और अथॉरिटी होगा ये समग्र क्षेत्र में पराली को हटाने के लिए टेक्नोलॉजी का मॉडल और बिजनेस मॉडल को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसको अगर सही ढंग से किया जाएगा 4 साल का अंदर इसका समाधान हो सकता है
जी। जलवायु पर्यावरण न ही सिर्फ सरकार की या प्रशासन की जिम्मेदारी है बल्कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबकी भागीदारी बनती है इसमें काम करने के लिए और हम सबको समझ करके इसकी तरफ देखना चाहिए कि हम अपना आने वाला कल बेहतर बना सकें। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए, हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अभी सुन रहे थे जलवायु न्याय के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉ श्रीकांत के पाणिग्रही। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।